نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لازيدنكم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن ادم يسب الدار وانا الدهر بيد الامر يقلب الليل والنهار او كما قال عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صرف چھوٹی سی بات کرنا مقصد تھا وہ یہ تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم میرا شکر کرو تو میں تمہاری باؤنٹیز کو بلیسنگز کو اور بڑھاؤں گا تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا بات بہت آسان ہے ظاہر ہے عام طور پہ ہم سب لوگ پڑھتے بھی ہیں یہ اور سنتے بھی ہیں بڑوں سے کہ شکر کی اہمیت ہے شکر کرنے سے اللہ ہماری نعمتوں کو اور بڑھاتے ہیں لیکن حدیث میں ایک آتا ہے حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اس کو بولتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے یؤذینی ابن آدم یہ جو ابن آدم ہے انسان کا کے بارے میں فرمایا ہی ہرٹس می یہ مجھے تکلیف دیتا ہے یسب الدہر ہے یہ زمانے کو برا بھلا بولتا ہے اب انت دارو زمانہ تو میں ہی ہوں بید الامر یہ ہر چیز دنیا میں امر کہتے ہیں ایوری تھنگ اٹس ان مائی ہینڈس قلب اللیل و النہار یہ رات کو دن اور دن کو رات یہ تو میں بنا رہا ہوں ابھی آج رات ہے آج دن ہے یہ تو میں بنا رہا ہوں تو یہ ابن آدم یہ انسان جو ہے یہ مجھے تکلیف دیتا ہے یہ مجھے برا یہ زمانے کو برا بھلا بولتا ہے یہ ان اے وے ناشکری کرتا ہے کیا وجہ ہے اس کی کہ ہمیں پتہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ہم شکر کریں گے اور ہمیں اور زیادہ ملے گا اور ہم اوپر اوپر سے کر بھی رہے ہوتے ہیں ان اے وے اور بعض ہوتے ہیں ہم اکثر نیک لوگ اور دوسرے جو دل سے بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وجہ یہ ہے اگر آپ نوٹ کریں اس پوری دنیا میں ہر چیز کو ہر پروڈکٹ کو کوئی بھی شے جب وجود میں آتی ہے ان کریشن آتی ہے اس کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی ریزن ہوتا ہے وہ ریزن کیا ہوتا ہے وہ ریزن تو جب بھی وہ پروڈکشن اس کی ہوتی ہے اس کو بنانے والا جو کوئی نہ کوئی ایک انجینئر ہوتا ہے کوئی ڈیزائنر ہوتا ہے کوئی مینوفیکچرر ہوتا ہے کوئی پروڈیوسر ہوتا ہے وہ جب اس پروڈکٹ کو بناتا ہے اس بنانے والے کو اصل میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو اس کی یوزز میں کیا چیز بینیفیشل ہے اور کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے اس سے زیادہ کسی دوسرے کو نہیں پتہ ہوتا آپ عام طور سے دیکھ لیں کوئی آئی فون کے باکس کو اٹھا لیں نیا خریدیں برانڈ نیو اس کو نکالیں پیچھے اس کے کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں یا ویب سائٹ پہ چلے جائیں پرانے زمانے میں تو فون بک پوری پوری بکس اندر بکلیٹس آتی تھی اور گاڑی خرید لیں کوئی نئی اندر پوری ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے کوڈ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایک بک ہوتی ہے جو اس کی ڈوز اور ڈونٹس کے بارے میں ہوتی ہے ہر پروڈکٹ ایون ایک چھوٹا سا کوئی بچے کا ٹوائے لیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس کے باکس کے اوپر ایک وارننگ ایک ڈسکلیمر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس پروڈکٹ کے لیے ہارمفل ہے اور یہ چیز اس پروڈکٹ کے لیے بینیفیشل ہے تو جو بنانے والا ہوتا ہے اصل اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے اس پروڈکٹ کو ان اٹ سیلف خود پتا نہیں ہوتا لیکن ظاہر ہے انسان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کانا اکثر اشعین جدلا کہ یہ جھگڑالو ہے یہ عام طور پہ یہ انسان کی کوالٹیز اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے ظاہر ہے وہ بنانے والا جو ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ اس کی کوالٹیز کیا ہے یہ کیا کرتا کیا ہے یہ پہلی تو چیز جھگڑالو ہے یو نو از ایزی پرووک ہونے والا ہے آسانی سے لڑائی جھگڑا بات بات پہ پرووک ہونا یا آپس میں لڑنا جھگڑنا یہ اس کی ایک کوالٹی ہے ان انسان ظلومن جہولا یہ ظالم ہے یعنی عام طور سے ظالم ہم سمجھتے ہیں کوئی لیڈر ہے کوئی حکمران ہے وہ اپنے سٹیزنز پہ اپنے نیشنلز پہ اپنے جو عوام ہیں ان پہ ظالم ہے ایسا نہیں ہوتا ظالم ہر وہ شخص ہے جو اپنے سے ماتحت جو بھی اس کے انڈر لوگ ہیں ایون چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ گھروں کے اندر کوئی بیوی بچے سے لے کر یا بڑے سے بڑے لیول پہ اس کی جاب کر رہے ہیں کوئی آفس میں اپنے امپلائیز ہیں یا اس سے بڑے لیول پہ ہر بندہ اپنے سے انڈر کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کا حق مار رہا ہے اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو وہ اس ظالم کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے جہولا جاہل ہے جاہل کو عام طور سے ہم سمجھتے ہیں جاہل کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے لیکن جاہل اس کو بولتے ہیں جاہل از اگینسٹ اینڈ one who has knowledge and one who doesn't have knowledge. एक बंदा है वो समझता ही है कि मुझे बहुत नॉलेज है, इंसान है, वो समझता है, वो बात बात पे, वो इसीलिए आप नोट करें कि हमारे जो साइकी है, हमें अक्सर हर चीज़ के अंदर किसी ना किसी दलील की ज़रूरत पड़ रही होती है, लॉजिक की ज़रूरत पड़ रही होती है, अपने एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत पड़ रही होती है कि ये लॉजिक है इसके पीछे. जबकि अल्लाह कह रहा है ये ज़लूमन जहूला, ये तो जाहिल है, इसको पता ही नहीं है एक चीज़ का, ये इसीलिए लॉजिक्स के पीछे लगा हुआ है और आगे से समझाने पे लगा हुआ है. इन रियलिटी इसको खुद नहीं पता अपना मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं. इन्नल इंसाना, एक और जगह पर है, खुली का हलुआ, ये जल्दबाज है, हर चीज़ में ना जल्दी 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 डिसीजन लेता है. इज़ा मस्सा शर्रु जजुआ, जब भी इसको कोई बुराई पहुंचती है फौरन किसी दूसरे की तरफ उसको एसोसिएट कर देगा, उसकी नस्बत किसी दूसरे की तरफ फौरन के यार मुझे फलां चीज़ की वजह से नुकसान हो रहा है, अपनी वजह से नुकसान नहीं हुआ, मैंने कोई गलती कभी नहीं की. अपनी गलती मानने के लिए कभी भी हम तैयार ही नहीं होते, हमारी एक क्वालिटी है बहैसियत इन रियलिटी एज ए ह्यूमन मैनकाइंड, हमारी एक क्वालिटी है कि हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते. इसीलिए अल्लाह कह रहे हैं मस्सा शर्रु जजुआ, ये फौरन दूसरे की तरफ बुराई की, हर बुराई की नस्बत दूसरे की तरफ, वैज़ा खैर मस्सा खैरु मनुआ, और जब भी कोई अच्छाई आती है, नेकी आती है, कोई ब्लेसिंग आती है, तो वो उसकी अपनी वजह से होती है. हालांकि अम्बिया कराम की जो सुन्नत जो अल्लाह ने हमें सिखाई, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, क्या फरमा रहे थे, वफाइज़ा मरिस्तु यशफीनी, जब बीमार मैं, ये यानी एक उनका पैटर्न है जो अल्लाह क्या कह रहे हैं, वाइज़ा मरिस्तु, बीमार मैं खुद होता हूँ. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा बीमार मैं होता हूँ, यशफीनी, और शिफा मुझे अल्लाह दे देता है. यानी उसकी नस्बत भी सिर्फ जो बुराई की थी वो अपने तरफ की, और शिफा देने वाला अल्लाह था, अच्छाई की नस्बत उसकी की. अम्बिया का वो था, एक मकाम था, जाहिर है हम उस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन इंसान की बहरहाल ये सब क्वालिटीज, और इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से देख लें कैटेगोरिकली शुक्र बड़ा इजी चीज़ है, करना चाहिए हम सबको, लेकिन हम नहीं करते, और यही देखें इसी वजह से हम लोग डाउन द ड्रेन जाते जा रहे हैं. आई मीन मे बी मटीरियलिस्टिकली हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, इन मटीरियल वर्ल्ड प्रॉब्ली हम लोग आगे जा रहे होंगे, लेकिन हमारी जो सोच है या हमारा जो कल्चर है उसके मुताबिक हम डाउन द ड्रेन दिन ब दिन जाते जा रहे हैं. हालांकि इवन दो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये अल्लाह की नेमत है, हम सुन रहे हैं, कान है, ये अल्लाह ने हमें दिए, नहीं दिए होते तो क्या होता, नहीं आवाज़ ही नहीं आती. ज़बान दी अल्लाह ने, हम बोलने के काबिल हैं, आँखें दी हैं, ये हमारी नेमत है अल्लाह की, हम देख रहे हैं दिन ब दिन. वो मुझे 2014 में, इससे पहले 2013 में गालबन मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, हज पे एक मरतबा था हमारे साथ ग्रुप में, एक उधर रामबाग में कराची में एक फर्नीचर स्टोर वाले थे साहब, उनका बेटा था, टीनेजर था, यंग, अंधा था, ही वॉज ब्लाइंड. आई स्टिल रिमेंबर, मुझे उसके सफेस माइंड से ही नहीं जाता, वो बच्चा देख ही नहीं सकता था, वो बच्चा देख ही नहीं सकता. हम हरम में खड़े हुए हैं मताफ़ के अंदर, और उस बच्चे को, यानी उसको एक फीलिंग ही नहीं आ रही कि हम तो काबे को देख रहे हैं, हम लोग उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, हमें तो ये एहसास ही नहीं है कि आई साइड भी कोई अल्लाह की नेमत है. और मैंने उस बेचारे बच्चे को देखा, वो टीनेजर, छोटा सा बच्चा, और वो अंधा है, और उसको असल कदर है. वो बाप को कहता था किसी तरह मुझे जाके काबे को हाथ लगाने, मुझे इसके कपड़े को पकड़ना है. और वहाँ रश इतना था, हज का टाइम था, इतना रश था, तो वो आगे कैसे जाए मताफ में. फिर हम कुछ ग्रुप के लोगों ने कहा चले आए, हम मिलके चलते हैं, और किसी तरह उसको आगे, और बच्चे को हम ले गए आगे, बहरहाल हतीम और रुकन यमानी के दरमियान का वो साइड थी, मुझे याद है, वहाँ ले जाके उसको हमने खड़ा किया, और उसने काबे के उस खिलाफ को पकड़ा, और वो बेचारा बच्चा धाड़े मार मार के रो रहा था. वो छोटा सा बच्चा, टीनेजर, उसकी आँखें ही नहीं है, उसको वो हम लोगों को हमने रियलाइज ही नहीं किया, ये अल्लाह की नेमत है, ये हम सांस जो एक एक दिन में सांस ले रहे हैं, ये अल्लाह की नेमत है. हम अगर सांस लेने के काबिल नहीं हो, आप लोग आजकल देख लें ये जगह जगह जो पेंडेमिक ही फैला हुआ है, असल प्रॉब्लम जो पेशेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमें सांस हमारा रुकता है. जो जिनकी डेथ्स हो रही है उनकी भी असल रीज़न वो सांस रुकने की वजह से हो रही है. और ये एक ऑक्सीजन ही आप नोट करें, एक हमारा सांस खाली हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इसमें कितना ऑक्सीजन हम अंदर इनहेल करते हैं और जो भी हम एक्सहेल करते हैं, ये क्या अल्लाह की नेमत है जो हमारे को सांस ले रहा है. हमारा ये सांस ही रुक जाए, 10 मिनट हम सांस नहीं रोक, 10 मिनट क्या, हम लोग 1 मिनट आधा मिनट सांस नहीं रोक सकते, रुके और देखें हमारा क्या हाल होगा. तो ये भी अल्लाह की एक नेमत ही है. बहरहाल हम लोग ना शुक्र हैं, हम लोग अक्सर इसीलिए क्या अल्लाह ने कहा था ये जल्दबाज है, हलुआ, ये जल्दबाज है, हर चीज़ में ना इसको बस ये है कि मुझे कल की चीज़ आज मिल जाए, कल जो मेरी नसीब में बेनिफिट है वो मुझे आज ही मिल जाए और मैं फारिग हो जाऊँ. और अभी आप पूरी असाइड फ्रॉम ऑल द पेंडेमिक असाइड फ्रॉम एवरीथिंग पूरी दुनिया के आप इस वक्त इकोनॉमिकल सिचुएशन देख लें वो क्या मेन रीज़न उसका छोटे से छोटे लेवल पे ले लें बड़े से पे आ जाएं उससे बड़े पे आ जाएं पूरी दुनिया का एक मैग्नीट्यूड उठा के देख लें मैक्रो लेवल के ऊपर वो रीज़न क्या है वो ये हलुआ जल्दबाज होना क्या डेट लेता जाऊं मैं कर्जा लेता जाऊं मैं लोन लेता जाऊं बड़े से बड़े गवर्नमेंट लेवल पे देख लें आप वह देख लें यहाँ कैनेडा में वैंकूवर सिटीज ये अल्बर्टा इज ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी क्यों वो डेट लेते जाएंगे तो यही होगा पूरे कनाडा में इस वक्त कल मैं इकोनॉमिक मिनिस्टर का देख रहा था बल्कि रियल स्टेट वो उस मिनिस्टर का नाम दिमाग से निकल गया वो खुद बोलता है ये हाउस होल्ड डेट जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल पे है उस लेवल पे है कि रियल स्टेट प्राइसेस ही सस्टेन नहीं कर पाएंगी पूरे अमेरिका में देख ले $6 trillion की आज वी स्पीक लास्ट मंथ तक ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुकी है फेडरल रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट खाली वो क्यों हो रही है क्योंकि वो पैसे छापते जा रहे हैं और लेते जा रहे हैं उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा कल अपनी हार्डवर्क अपनी मेहनत अपनी एफिशिएंसी के साथ उस जो इंसान किसी ज़माने में होता था हार्डवर्क करता था एफिशिएंसी के साथ कमा के और फिर कुछ लेता था और कोई बेनिफिट हासिल करता था वो आज के ज़माने में कॉन्सेप्ट ये हो गया कि मैं किसी तरह से लोन ले लूँ बैंक से फौरन डेट लूँ फिर उससे बड़े लेवल पर लूँ और ये पूरा एक निज़ाम ऐसा चला हुआ कि बड़े से बड़े कंट्री के लेवल तक वो फेडरल रिजर्व बैंक्स बने हुए हैं वो नोट छापते जा रहे हैं वो बड़े से बड़े लेवल पे इकोनॉमीज में पंप करते जा रहे हैं और एक डेट बबल पूरा शॉर्ट ऑफ बना हुआ यही 2008 में भी हुआ था पूरी वर्ल्ड की मॉर्गेज स्लंप आया था इकोनॉमीज कोलैप्स हुई थी यही अगेन अभी हम देख रहे हैं और ये प्रॉब्ली आगे वर्ल्ड तो एनीवेज ये जल्दबाज होना ये सब इसका मेन रीज़न सबका यही है सिर्फ कहने का मकसद ये था जो शुक्र वाली अल्लाह ने हमें बात बताई लाइन शकर तुम लाजीदनकुम अगर हम शुक्र करेंगे अल्लाह और बढ़ाएगा नेमतों को फाइनली मैं सिर्फ लास्ट बात करके कंक्लूड करता हूँ कुरान में आता है अल्लाह ने एक बस्ती वालों की मिसाल दी ज़रा बल्ला मसलन करियतन एक लोग थे कुछ लोग हैं कोई भी नेशन है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं कानत आमिनतम मुतमैना बहुत ही अमन से पुरसकून रह रहे हैं बड़े मुतमैन हैं अपने लाइफ स्टाइल से मुतमैन हैं या तिया रिस्कुआ रगदम मिनकुल्ली मकान उनको हर तरफ से रिस्क आ रहा है हर तरफ से फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स ऑफ देयर लाइफ्स उनको अल्लाह नेमतें अता कर रहा है फकफरत भी अनुमिल्लाही फिर वो गलती क्या कर रहे हैं एक गलती वो करते हैं कफरत भी अनुमिल्लाही वो अल्लाह की नाशुकरी करते हैं अल्लाह की नेमतों को जो अल्लाह ने हमें दी हुई हैं उसकी ब्लेसिंग्स को उसकी बाउंड्रीज को उनके हम उन पर शुक्र नहीं करते तो फ़ाज़ाकल्लाहु लिबासल जोई वल खौफी बिमा कानू यस्नाउन अल्लाह ताला उनको एक दो किस्म के लिबास पहना देते हैं एक खौफ का लिबास ये खोल अल्लाह कह रहे हैं यूँ यू नो ऐसे ऊपर हमारे चढ़ गया एक खौफ का हर चीज़ अब डर लगा हुआ है अब खौफ लगा हुआ है एक अननोन सा फियर है कभी ये आजकल तो बीमारी का फियर है ज़्यादातर लेकिन कभी गवर्नमेंट का फियर है कभी टैक्स अथॉरिटी का फियर है कभी पुलिस का फियर है कभी इमिग्रेशन ऑफिसर का कोई ना कोई हमारे माइंड में किसी ना किसी फॉर्म में एक फेयर बस अब दिमाग में लग गया दूसरे किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में रहते हैं तो चोर डाकुओं का फेयर है मगर का किसी छीनने वाले का रोड पे गाड़ी में जा रहे हैं मोबाइल पे बात नहीं कर सकते कोई आगे मोबाइल छीनने वाला आ गया ये क्या होगा मोबाइल छीन के ले जाएगा तो वो फेयर कहीं भी किसी दुनिया के किसी कोने में रह रहे हैं वो फेयर ही है वो बंदा रह ही उस खोल में अल्लाह ने वो चढ़ा दिया फ़ज़ाकल्लाहु लिबासल जो और खौफ एक खौफ का और एक भूख का फिर पैसों के पीछे भाग रहे हैं मिलना उतना ही है जितना नसीब में है भागना बिल्कुल मना नहीं है बिल्कुल लेकिन यकीन हो बिलीव हो उस पर जितना भी अल्लाह ने दे दिया उस पर शुक्र करेंगे इंशाल्लाह तो अल्लाह कहता है लाजीदन्नकुम मैं और बढ़ाऊँगा और इतना बेहिसाब दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते तो बहरहाल आज क्योंकि फाइनली हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा रमज़ान पूरा गुजारा ही है और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सब ने रोज़े भी रखे हैं तो मेन चीज़ जो एक मैसेज हमने एटलीस्ट ले लें वो ये है कि कम से कम जिस लेवल पर भी हो जिस कैपेसिटी में भी हो कोशिश करें कि हम जितना भी हो सके एटलीस्ट अल्लाह का शुक्र अदा करें और कुछ नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल के ही हम शुक्र अदा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलना भी उन कलमात में से है जो यू नो आसमानों तक पहुंचता है और उसके भी बेतहाशा फ़ायदे और फवायद हदीसें में लिखे हैं तो इतना एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं बाकी बार जितना हो सके अपने एंड पे ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारी नेमतों को और बढ़ाएगा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।